तभी चैतन्य चैतामृत से मध्य लीला अध्याय संख्या 9 और अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं। तो मध्य लीला के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में महाप्रभु के जो दक्षिण भारत की यात्रा है उसके विषय में बताया गया है। तो अभी जो श्लोक संख्या है प्रयास संख्या इसमें 25 है, लेकिन इससे पहले भी और कुछ प्रयास है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। 15 मल्लिकार्जुन तीर्थ आये महेश देखिला ताहा सब लोके कृष्ण नाम लोहिला। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मल्लिकार्जुन तीर्थ गए और वहां पर शिव जी के आचार्य विग्रह का दर्शन किया। उन्होंने सारे लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित भी किया। इसमें छोटा सा तात्पर्य है, मल्लिकार्जुन का दूसरा नाम श्री शैल है। यह कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर कर्नूल से लगभग 100 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। गांव के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं और इन दीवारों के भीतर मल्लिकार्जुन आचार्य विग्रह है। यह शिव जी का आचार्य विग्रह है और ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामदास महादेव करीला दर्शन अहो बोले नृसिंहर करीला गमन। वहां पर उन्होंने भगवान राम के दास महादेव शिव का दर्शन किया। इसके बाद वे अहोबल नृसिंह देखने गए। नृसिंह देखिया तारे केला रति स्तुति सिद्ध वट केला यहाँ मूर्ति सीतापति। अहोबल नृसिंह आचार्य विग्रह का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की स्तुति की। फिर वे सिद्ध वट गए जहां उन्होंने सीता देवी के स्वामी रामचंद्र के आचार्य विग्रह का दर्शन किया। यह सिद्धवट जिसे सिघौट भी कहा जाता है कुड़ापा गांव से 10 मील पूर्व है। पहले यह स्थान दक्षिण बनारस कहलाता था। यहाँ पर बरगद का विशाल वृक्ष है अतएव यह सिद्धवट कहलाता है। वट का अर्थ है बरगद का पेड़। रघुनाथ देखी कैला प्रणति स्तवन तहां एक विप्र प्रभु कैला निमंत्रण। महाप्रभु ने रघुवंशी भगवान रामचंद्र के आचार्य विग्रह का दर्शन करने के बाद उनको नमस्कार किया और स्तुति की। तत्पश्चात एक ब्राह्मण ने उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। सही विप्र नाम राम नाम निरंतर लहिया राम नाम बिना अन्य वाणी न कहिया। वह ब्राह्मण निरंतर पवित्र राम नाम को उच्चारण करता था। वह ब्राह्मण राम नाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं करता था। सही दिन तारे घरे रही भिक्षा करी तारे कृपा करी आगे चले लगर हरी। उस दिन भगवान चैतन्य वही रहे और उसके बाद उसके घर में प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह उस ब्राह्मण पर कृपा करने के बाद महाप्रभु आगे बढ़े। स्कंद क्षेत्र तीर्थ कैल स्कंद दर्शन त्रिमठ आईला तहा देखे त्रिविक्रम। स्कंद क्षेत्र नामक तीर्थ स्थल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्कंद का मंदिर देखा। वहां से वह त्रिमठ गए जहां उन्होंने विष्णु के आचार्य विग्रह त्रिविक्रम का दर्शन किया। पुनः सिद्ध वट आईला सही विप्र घरे सही विप्र कृष्ण नाम लैल निरंतरे। उसमें उन्होंने वह दर्शन देख करके वह चले गए थे और फिर वापस जब आए तब वो पहले क्या नाम लेता था? राम नाम का जो है बचपन से उच्चारण करता था, लेकिन जब ही हम महाप्रभु आए तो कृष्ण का उच्चारण कर रहा था। वो कृष्ण नाम लय निरंतर निरंतर वो कृष्ण का नाम ले रहा था। त्रिविक्रम मंदिर का दर्शन करने के बाद महाप्रभु सिद्धवट लौट आए जहां वे पुनः उसी ब्राह्मण के घर आए जो अब निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा था। अब वो फॉलो अप लेने के लिए क्या कर रही है तो कृष्ण नाम के कीर्तन में लगा हुआ था। भिक्षा करी महाप्रभु तारे प्रश्न कैला कहे विप्र तुम्हार कौन दे सहेला। भोजन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से पूछा, हे मित्रवर मुझसे अपनी वर्तमान स्थिति के विषय में बतलाओ। उनके रियलाइजेशन से पूछ रहे, पूर्वे तुम्हें निरंतर लेते राम नाम एवे के ने निरंतर लव कृष्ण नाम। पहले तो तुम भगवान राम के पवित्र नाम का निरंतर जप करते थे, तुम अब कृष्ण नाम का निरंतर जप क्यों करते हो? पहले तो राम नाम का जप करते थे निरंतर वो भी, अब कृष्ण नाम का जप क्यों करते हो? विप्र बोले, विप्र बोले ऐ तुम्हार दर्शन प्रभावे तुम्हार देखी गेला मोरा आजन्म स्वभावे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाशय, यह आपके प्रभाव से है। आपका दर्शन के बाद मैंने अपने जीवन भर के उस अभ्यास को छोड़ दिया। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। कैसे हुआ ये सब? इसी पे आप करते हैं। विप्र बोले यही तो मार दर्शन प्रभावे, तोमा देखी गेला मोरा आजन्म स्वभावे। विप्र बोले यही तो मार दर्शन प्रभावे, तोमा देखी गेला मोरा आजन्म स्वभावे। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की विप्र बोले, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ऐ यह तुम्हार दर्शन प्रभावे, आपके दर्शन के प्रभाव से तोमा देखी आपको देखकर गेला चला गया मोरा मेरा आजन्मा जीवन भर का स्वभावे स्वभाव। अनुवाद इस प्रकार है, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाशय, यह आपके प्रभाव से है। आपका दर्शन करने के बाद मैंने अपने जीवन भर के उस अभ्यास को छोड़ दिया। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानं शलाकय शक्षरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतये स्वयं रूपा कदामयं ददाति सपदान्तिकम् श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते राधा कांत नमस्तुते राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिका। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं सबका आशीर्वाद मांगना चाहूँगा जिससे मैं कुछ इस कथा पे प्रकाश डाल सकूँ। तभी हम देख रहे हैं कि इस अध्याय का जो पहला श्लोक है जो पयाल है उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं नाना मत ग्रह ग्रस्तान दक्षिणात जन द्वीपान कृपारी न विमुच्यतन तान गौरश्चक्र च वैष्णवान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के निवासियों का हृदय परिवर्तन किया। ये लोग हाथी के समान बलशाली थे किंतु वे विभिन्न विचारधाराओं यथा बौद्ध जैन मायावादी दर्शन रूपी घड़ियालों के चुंगल में फंसे हुए थे। महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी चक्र से सबको वैष्णव अर्थात भगवत भक्त बनाकर सबका उद्धार कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो दक्षिण भारत की यात्रा की उसके बहुत सारे मुख्य कारण थे। उसमें से मुख्य कारण ये था कि दक्षिण भारत का उद्धार करना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दक्षिण देश से उद्धारित करीला ऐ छला। तो उन्होंने छल रस जो है दक्षिण भारत का उद्धार करने के लिए वो वहां से निकले संन्यास लेकर के। तो छल क्या था उनका? उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ विश्व रूप को खोजने के लिए जा रहा हूँ। विश्वरूप जो है वो घर छोड़ करके पहले ही चले गए थे तो उनके दर्शन होंगे उनको ढूंढने के लिए मैं जा रहा था, ये छल था। लेकिन वास्तविक रूप से उनकी इच्छा थी कि पूरे दक्षिण भारत का जो है उद्धार करना। आगे और भी प्रसंग आएगा कि कैसे बुद्धों जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनको उन्होंने किस प्रकार से कन्वर्ट किया। उसके साथ साथ जितने भी तत्ववादी थे उनको उन्होंने कैसे वैष्णव बनाया। तो पूरा का पूरा दक्षिण भारत जो है वो एक तरह से वैष्णविज्म में परिवर्तित हो गया महाप्रभु के प्रभाव से। तो महाप्रभु के दक्षिण भारत के गमन का एक मुख्य कारण ये भी था। उसके साथ साथ महाप्रभु ये भी चाहते थे कि संकीर्तन आंदोलन जो है उसका शुरुआत हो जाए। जैसे उन्होंने मायापुर में संकीर्तन आंदोलन शुरू तो किया था लेकिन बहुत ही कंसील्ड तरीके से छुप छुप के करते थे। लेकिन पूर्ण रूप से खुल करके जो संकीर्तन आंदोलन है उसका जो है दक्षिण भारत में आकर के ही उन्होंने एक तरह से इनॉग्रेशन किया। और जब इस प्रकार से वो संकीर्तन करते थे तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कंचन सदृश देखा देहा अरुण वसन पुलका शोक ताहते भूषण। तो उनका जो देह था वो कंचन के समान, कंचन मतलब सोने के समान, कंचन सदृश देह, अरुण वशन, अरुण मतलब जो सूर्योदय होता है उस समय जो सूर्य की जो लालिमा होती है उसको उसको अरुण कहते हैं। तो वो जो लालिमा होती है वैसा उनका वस्त्र था, उस वस्त्र का धारण करके कंचन देह से वो जो खूब संकीर्तन करते थे, और उनके कुछ आभूषण थे जैसे श्री कृष्ण के तो नाना प्रकार के आभूषण है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कि सन्यासी रूप में हैं उनके क्या आभूषण है, कह रहे हैं पुलक अश्रु कंप श्वेत तहाते भूषण। पुलक अश्रु, अश्रु धारा बह रही है, कंप श्वेत कंपन हो रहा है, श्वेत परस्पिरेशन हो रहा है, वह उनके आभूषण है। तो जब यह अलारनाथ में चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से उन्मत्त नृत्य किया और कितने लोगों को वहां पर उन्होंने भक्त बनाया, तो यह देखकर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, देखे नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने ए रूप आगे हावे ग्रामे ग्रामे। यह देखकर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि यही चीज जो आगे क्या होगा, हर एक गांव में होगा, ग्रामे ग्राम, हर एक विलेज एंड एवरी नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द होल वर्ल्ड, जितने भी ग्राम है पूरे विश्व भर में हर एक जगह इसी रूप का इसी तरह प्रकार से संकीर्तन होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी उस प्यार के परपट में कहते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस कॉन के माध्यम से नित्यानंद प्रभु की जो भविष्यवाणी थी आज वो भविष्यवाणी क्या हो रही है, वो सत्य साबित हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। और उसमें श्रील प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं तात्पर्य में कि इस भविष्यवाणी का निश्चित रूप से यह सफल होगा जब भक्तगण फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली, जो चार नियम है खास करके उनको वो बहुत ही कट्टरता के साथ बहुत सख्ती के साथ पालन करेंगे, और 16 माला का जप जो है वो नियमित रूप से करेंगे, तो निश्चित रूप से यह नित्यानंद प्रभु की जो भविष्यवाणी है कि पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से ग्रामे ग्रामे जो संकीर्तन होगा वो पूरा होगा। तो यह हम देखते हैं कि आज किस प्रकार से संकीर्तन हो रहा है, और एक भक्त ऐसे बता रहे थे कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा है आज देखते हैं कि पूरे विश्व भर में है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो न्यूयॉर्क में जो पहली बार उसका परमिशन लिया गया वो किस प्रकार लिया गया, तो 1975 ईस्वी में श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि न्यूयॉर्क का जो सबसे पॉश एरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, वहां से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलनी चाहिए। तो वहां के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उनको बोला कि आप जाओ ये परमिशन लेकर के आओ, तो वहां पे वो गए और वहां के जो मुख्य पुलिस अधिकारी थे उनसे मिलने के लिए गए। तो बहुत सारे लेवल्स थे, बहुत सारे लेयर्स थे, लेकिन वो भक्त जो इतने कॉन्फिडेंट थे वो आगे आगे बढ़ते चले गए। वो कहाँ जा रहे थे, मिलना मुझे पुलिस ऑफिसर से, और उसको प्रसाद देते थे। फिर आगे कोई संतरे मिलता था, कहाँ जा रहे हो, मिलना मुझे पुलिस ऑफिसर से, और प्रसाद दे देते थे। उनका कॉन्फिडेंस और प्रसाद को देखकर कोई नहीं उनको रोक रहा था। फिर वो जो पुलिस ऑफिसर जो मेन था व्यक्ति वहां पे जाकर के उनसे मिले, बोले अरे भाई यहाँ पे तुम कैसे पहुंच गए, बोले तुम्हारे संतरियों ने भेजा है। तो उसको भी थोड़ा प्रसाद दिया, और प्रसाद था बताओ क्या करना है, बोला कि हमारे जो है जगन्नाथ जी हैं पूरे विश्व भर के मालिक हैं, और उनकी रथ यात्रा जो आज पूरे विश्व भर में हो रही है, न्यूयॉर्क सिटी में नहीं हो रही है, तो यहाँ पे उनकी जो रथ यात्रा होनी चाहिए। बोला अच्छा क्या करते हैं उसमें, बोले उसमें हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, और हरिनाम संकीर्तन जो है कलयुग के जितने भी दोष हैं, कलयुग के जितने भी गलतियां हैं सबको वो नाश करने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि न्यूयॉर्क में जो है सुख आए, शांति आए, अच्छा सब कुछ हो, तो आपको जो है हमें परमिशन देनी पड़ेगी। बोलता ठीक है दे देता हूँ। इतना कॉन्फिडेंटली उसने बोला, बोले लाओ कहाँ पे साइन कर रहे, कह रहा मैं साइन तो कर रहा हूं लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों साइन कर रहा हूं। और उसने लिख दिया परमिशन ग्रांटेड। बस फिर भक्तों ने क्या किया, उस लेटर को अच्छी तरह लेमिनेशन करा दिया, उसके बहुत सारे फोटोकॉपी निकाल दी। और आज तक जो है उसी लेटर को दिखाते हैं क्या हमें परमिशन मिला हुआ है। तो अमेरिका में ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन करके, कि अगर आपको फ्रीडम रिलीजन के ऊपर कुछ बात आती है तो आप कोर्ट में केस भी कर सकते हो। तो एक बार उसने परमिशन दे दी, तो परंपरा बन गई, जो भी नए पुलिस ऑफिसर आते हैं उनको ये दिखाते रहते हैं रिवोल। तो इस प्रकार से देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी कि ग्राम है ग्राम है, तो न्यूयॉर्क जैसा ग्राम उसमें भी आज जय संकीर्तन होता है। उसके साथ साथ महाप्रभु के दक्षिण भारत इसलिए गए क्योंकि वो सन्यासी के विधि विधानों का प्रदर्शन करना चाहते थे कि सन्यास धर्म में रहकर किस प्रकार से स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होकर प्रचार करना। श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, स्वच्छंद होकर के किस प्रकार से प्रचार करना। तो वहां पे जब वो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकल ही रहे थे तो सभी कह रहे थे कि मैं आपके साथ चलता हूँ। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। कितने सालों का? 20 वर्षों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने पूरा दक्षिण भारत, उत्तर भारत, जितने तीर्थ स्थली है सभी के पास मेरा सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, तो आप मैं हमारे साथ चलिए। महाप्रभु ने बोला कि मैंने आपका एक्सपीरियंस देखा हुआ है। मेरा संन्यास हुआ था तब मुझे जाना था वृंदावन, आप मुझे वापस किधर ले आए? आपको तो रास्ते का ही नहीं पता है कि कौन सा रास्ता वृंदावन जाता है, कौन सा जगन्नाथपुरी जाता है। तो आप मुझे घुमा करके नवद्वीप लेकर के आए, फिर जब जगन्नाथपुरी हम आ रहे थे तो आपने मेरे संन्यास का डंडा ही तोड़ दिया, तो पता नहीं आगे आप क्या क्या करोगे, इसलिए मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा। फिर जगदानंद पंडित ने बोला कि मैं आपके साथ चलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम तो हमेशा भोग विलास के लिए मुझे ललायत करते रहते हो, चंदन का तेल लेकर के आगे लगाओ, सन्यासी का काम थोड़ी होता चंदन का तेल लगाना, तो मैं जहां जाऊंगा वहां भी तुम भोग मुझसे करवाओगे, इसलिए उनको मना कर दिया। दामोदर पंडित ने बोला तो उन्होंने कि तुम तो हमेशा मुझे वैष्णव एटिकेट से सिखाते रहते, ऐसा लगता मुझे कुछ पता ही नहीं वैष्णव एटिकेट क्या, इसलिए उनको भी मना कर दिया। मुकुंद ने बोला तो मुकुंद को बोला कि मैं थोड़ी भी ऑस्टेरिटी उसे तो कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा भी कुछ करता हूँ तो तुम रोने लगते हो, तुम्हारा हृदय रोने लगता है, तो तुम्हारा रोते हुए हृदय को देखकर मैं भी रोने लगता हूँ, तो हमेशा तुम भी रोगे मैं भी रोऊंगा, तुम कहेंगे। इसीलिए सबको मना कर दिया। और सन्यासी के कर्तव्य भी है कि हाँ, जैसे देश काल विधि के अनुसार कि सन्यासी को अकेले ही ट्रैवल करना चाहिए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर के, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है वह डिसीजंस लिए जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि किस प्रकार से जब भीष्म देव सरसैया पे लेटे हुए थे तो उनके समक्ष जो है नाना प्रकार के ऋषिगण आते हैं, सभी उनसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी दशा जो होती है वो ऐसे नहीं होती कि उनको ठीक प्रकार से रिसीव कर सके। उनके जो टोज से लेकर के हेड तक हर एक जगह क्या लगा हुआ था, बांध की सैया थी, एकदम बांध 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 सब जगह बांधे थे, वो कैसे उनको रिसीव करेंगे। तो उनके पास एक ही जगह बांध नहीं लगा हुआ था, वो क्या था, मुख में, जीवा पे। तो उन्होंने जो है सारे ऋषियों का, भगवान श्री कृष्ण का, पांडवों का जो स्वागत किया अपने जीवा से किया। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। और वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने जब संकीर्तन आंदोलन शुरू किया तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो संकीर्तन करते थे भक्तगण, लेकिन वही जब भारतवर्ष में जब आए तो भारतवर्ष में जब लोगों ने संकीर्तन करते हुए देखा तो उनको वो क्या समझते थे, ये कोई भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, वो पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी को जब ऐसा बोला गया तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसको लाइफ मेंबरशिप का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से जब देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है वो डिसीजंस बदले, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम में है, संन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उनको अकेले स्वच्छंद होकर के विचरण करना है और उसका हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना है। तीसरा कारण था टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीचिंग, सॉरी ये चौथा कारण है कि किस प्रकार से प्रचार करना है उसके सिद्धांतों को स्थापित करना, कि प्रीचिंग मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगी, प्रीचिंग के क्या क्या सिद्धांत है उसको स्टैब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए। तो हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से प्रचार करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते थे, खूब उन्मत्त कीर्तन करते थे और जो भी उनके समक्ष आता था उनको वो क्या करते थे, आलिंगन कर लेते थे इस प्रकार से। तो आलिंगन करने का मतलब क्या है? आलिंगन करने का मतलब है टू गिव एसोसिएशन, उसको अपना संग देना। चैतन्य महाप्रभु जो उस भक्त को अपना संग देते थे। और आलिंगन विदा शक्ति संचारिया, और आलिंगन करके फिर विदा करते थे कैसे, शक्ति संचारिया, शक्ति का संचार करते हुए। तो ये जो एसोसिएशन होता है, भक्तों का संग होता है, आप देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में, जितने भी शास्त्र हैं सभी जगह भक्तों के संग की बहुत गुणगान किया गया। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। उसी प्रकार माता देवभूति को जब शिक्षाएं दे रहे हैं कपिल देव, तो वो क्या कहते हैं, प्रसंगम मजरम पासम आत्मना कवियो विदु स साधु से कृतो मोक्षदारम अपावृतम, कि हमारे जितने भी अटैचमेंट्स हैं वो कट जाते हैं जब हम साधु के साथ अटैचमेंट करते हैं, और हमारा मुक्ति का जो द्वार है वो खुल जाता है। तो प्रीचिंग का पहला प्रिंसिपल ये है टू गिव एसोसिएशन, उनको अपना संग प्रदान करना। और जब हम संग लेते हैं या संग प्रदान करते हैं, जो शक्ति का संचार होता है वास्तविक रूप से, ये दो शक्तियां होती हैं, चित्त शक्ति और आनंद शक्ति। चित्त शक्ति मतलब जो ज्ञान शक्ति है, जो बलराम जी इनके रिप्रेजेंटेटिव है, चित्त शक्ति, और आनंद आलादनी शक्ति जो कि श्रीमती राधा रानी इनको रिप्रेजेंट करती। तो शक्ति का जो संचार होता है वो चित्त ज्ञान और आनंद इस प्रकार से। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में हमें शक्ति का आभास होता है। तो पहला प्रिंसिपल है इज टू इम्प्रेस, जिसका मतलब वास्तविक रूप से टू गिव एसोसिएशन, उनको अपना संग प्रदान करना। दूसरा है टू इम्पावर, उसके बाद संग लिया, उसके बाद जो है उनको इम्पावर किया। चतन चेतावत में कहते हैं कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। तो किसी भी प्रकार का जो प्रीचिंग होता है उसके लिए इम्पावरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो कृष्ण शक्ति जो कि हमें गुरु परंपरा के माध्यम से, भगवान के माध्यम से प्राप्त होता है, तो फिर उसको, उस व्यक्ति को इम्पावर भी करना है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी जब अपना प्रचार आंदोलन फैलाया तो उन्होंने कई लोगों को एम्पावर किया। एम्पावर करके ही आज इस्कॉन आप देखते हैं कितना बड़ा आंदोलन में परिवर्तित हो चुका है। देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने लंदन प्रीचिंग के लिए 3 कपल्स को भेजे, उनको एम्पावर किया। अपने शिष्यों को वो नाना प्रकार के जगहों में भेजते थे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे देशों में जहाँ पे लोग बिल्कुल ही मतलब सही प्रकार से नहीं रहने वाले, और काफी चोर उचक्के भी वहां रहते थे, तो उनके बीच में प्रचार किया। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी को इनवाइट किया गया प्रीचिंग प्रोग्राम में अफ्रीका में, तो वह इस प्रकार से वो जहां पर रुके थे तो उन्होंने अपना कपड़ा वॉश करके जो है सुखाने के लिए दिया था। और जब वो आए तो सारे कपड़े गायब हैं, उनको पता ही नहीं चला कहाँ गए कपड़े। तो फिर वो अपने लेक्चर देने के लिए बैठे, जब भी वो लेक्चर देने बैठे तो जितने भी लोग वहां पर बैठे थे उन्होंने किसके कपड़े पहने थे, प्रभुपाद जी के कपड़े पहन के लेक्चर सुन रहे। प्रभुपाद जी ने बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलने के बाद बोला कि गुरु के कपड़ों को नहीं छुड़ाना चाहिए। पहला इंस्ट्रक्शन दिया उनको। तो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में ही प्रचार हुआ है जिनको कुछ भी नहीं पता कि क्या गुरु होते हैं, क्या भगवान के भक्त होते हैं, किस प्रकार से वैष्णव टिकट्स का पालन किया जाता है। वैसे लोग भी भक्त आज देखते हैं कितना अच्छा प्रचार कर। तो ये शक्ति कहाँ से मिली, जब उनको एम्पावरमेंट किया गया, श्री प्रभुपाद जी ने एम्पावर किया अपने नाना प्रकार के शिष्य शिष्यों को। तीसरा आता है कि इंजॉय, कि जो वो भक्ति की शक्ति मिली, भक्ति की जो प्रक्रिया मिली उसको रेलिश करना। तो जो भक्त खुश होते हैं, प्रभा जी कई बार बोलते थे हैप्पी डिवोटीज आर द बेस्ट प्रीचर्स, जो भक्त खुश होते हैं वो सबसे अच्छे प्रचारक हैं। और ये जो है भक्ति की जो प्रक्रिया है वास्तविक रूप से व्यक्ति को आनंद प्रदान करती है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभयम। कि यह जो ज्ञान है, यह जो भक्ति का मार्ग है, इसको करते करते भी क्या होता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो जब व्यक्ति आनंद में रहता है वो अच्छा प्रचार करता है। तो उसी प्रकार से देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब किसी को आलिंगन करते थे तो व्यक्ति भी क्या हो जाता था, इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है। जैसे ना इलेक्ट्रिक करंट को आप छूते हैं तो आपको भी करंट लग जाता है, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जिसका आलिंगन करते थे, जिसमें शक्ति का संचार करते थे, वो इतना आनंद विभोर होकर के खूब उछलने लगता था। हरी 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 बोलता था, भगवान के अन्य नामों का कीर्तन करते हुए इतना आनंद में आ जाता था। फिर वो जब जाता था अपने गांव में, सब बोलते थे अरे क्या हुआ इसे, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो दुखी दास था, अब इतना आनंद में कैसे आ गया। तो वो उनसे वार्तालाप करते थे, तब जो है इसके आनंद को वो शेयर करते थे। तो टीचिंग का एक और प्रिंसिपल निकल के आता है यहाँ पे, टू एक्सचेंज, कि जो भी हमें आनंद की अनुभूति होती है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के, उसको शेयर करना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं क्या, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। कि मेरे भक्त लोग क्या करते हैं, मेरे विषय में ही चर्चा करते हैं, और ऐसा करने से उनको दो प्रकार का लाभ होता है, तुष्यंति च रमंति च, उनको आनंद की अनुभूति होती है, उसके साथ साथ डीप सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक और डेफिनेशन देते हैं प्रॉपर, टू शेयर द जॉय ऑफ डिवोशन, जो भी हमारे भक्ति का जॉय है, जो एक्सपीरियंसेस है, उसको शेयर करना, इसको प्रीचिंग भी कहते हैं। तो इसलिए यह भी आवश्यक सिद्धांत है कि भक्ति के जितने भी नियमों का हम किस प्रकार से करते हैं तो उसको शेयर करना एक दूसरे के साथ। तो जब वो शेयर करते थे तो वो भी उनके अंदर भी वो शक्ति का वो भी एसोसिएशन दे रहे हैं, तो वो भी उनके अंदर भी एक शक्ति का संचार होता था, उनको भी आनंद की अनुभूति होती थी। तो फिर क्या होता था, धीरे धीरे एक उसको बताता था, उसको बताता था, उसको बताता था, और पूरा का पूरा गांव जो है वो कृष्णमय बन जाता था, भगवान के भक्ति में ओतप्रोत हो जाता था। तो फिर जो एक और प्रिंसिपल निकल करके आते हैं एक्सपैंड, कि वो एक्सपेंशन वो बढ़ता चला जाता है, कि एक से स्टार्ट हुआ, उसने एसोसिएशन लिया, उसको एम्पावरमेंट मिली, उसको फिर आनंद की अनुभूति हुई, फिर वो अपने गांव गया, फिर वहां उसने शेयर किया, फिर सबको शेयर किया, वो सब आनंद में आ गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसका एक्सपेंशन हुआ, वो बढ़ता चला गया। जब बढ़ता चला गया तो फिर क्या हुआ, एक्सप्लोजन, बम फटा। पापा जी कहीं बोलते थे हरे कृष्णा एक्सप्लोजन, कि एक्सप्लोजन हुआ किसका, हरे कृष्णा का एक्सप्लोजन हुआ। तो उस गांव में कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आ रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी भक्तगण हैं, यहाँ तो सभी माला जप कर रहे हैं, यहाँ तो सबका हेयर स्टाइल चेंज हुआ है, ये इतने आनंद में क्यों है। तो दूसरे गांव का व्यक्ति जो है इस पूरे गांव से पूछता है, तो वो जब पूछता है तो वो भी कुछ सीख करके जाता है, तो उसके साथ भी वो सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो लोग उसको आलिंगन करते हैं, उसको एम्पावर करते हैं, उसका आनंद देते हैं, फिर एक्सचेंज करते हैं। फिर वो जब जाता है अपने गांव में, तो अपने गांव में जाके वो क्या करता है, वो भी ये सारी चीजें करता है, फिर एक्सपैंड। तो ऐसा करते करते क्या हो गया, एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। तो इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा साउथ इंडिया में जो है वो सब भक्त बनते चले गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सभी पूरा का पूरा साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, महाप्रभु के इस प्रकार के टीचिंग टेक्निक से क्या हो चुका था, वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो चुका था। और इसके साथ साथ महाप्रभु ने कई लोगों को एलिवेट भी किया। जैसे आप देखे कि इस वाले प्रसंग में क्या है, कि वो जो ब्राह्मण है, वो जो ब्राह्मण ऑलरेडी भक्त है लेकिन श्री राम का भक्त है, बचपन से ही उसने क्या किया हुआ है, राम की भक्ति की हुई है, राम के नाम का जप किया हुआ है, तो वहां से एक स्तर प्राप्त है उसको। लेकिन वहां से उसको स्वतः ही उन्होंने क्या किया, एलिवेट कर दिया, उसको राम भक्त से क्या बना दिया, कृष्ण भक्त बना दिया। ऐसे भी हम देखते हैं कि कई रामानंदी, तात्वेन प्रभुपाद जी बताते, बहुत सारे रामानंदी हैं साउथ इंडिया में, तो जितने भी रामानंदी थे सबको उन्होंने कृष्णानंदी तत्ववादी थे, ऑलरेडी एक लेवल को उन्होंने अचीव किया हुआ है, तत्ववादी है, रामानंदी है, कुछ ना कुछ जो है उनके पास है, लेकिन उसको पूर्ण जो उत्तम स्थिति है उस स्थिति तक वो लेकर के उनको आए, उनको एलिवेट किया। जैसे वो श्रीरंगम में जाएंगे तो श्रीरंगम में फिर वो वेंकट भट्ट से मिलेंगे, वो श्री वैष्णव है, लेकिन फिर जो नारायण का भक्त है, ऑलरेडी एक स्थिति है उनकी, लेकिन अपने वार्तालाप से उन्होंने क्या किया, उनको एलिवेट कर दिया। तो उसी प्रकार से प्रीचिंग का ये भी सिद्धांत मिलता है कि जब हम प्रचार करते हैं तो नाना प्रकार के लोग हमसे टकराते हैं, हमसे मिलते हैं, जिनकी स्थिति कुछ ना कुछ होती है, कोई राम भक्ति में लगा है, कोई किसी देवी देवताओं की भक्ति में लगा हुआ, दुर्गा को उपासक है, कोई शिव जी का है। तो एक प्रचारक, एक दश प्रचारक का यह एक एक्सपर्टीज होता है कि वो उसको धीरे धीरे उस स्थिति से उठा करके कृष्ण भक्ति तक ले आए, जहां तक ये कहे कि हाँ सब कुछ तो श्री कृष्ण ही है, और कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से अपने हृदय को लगाए। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी चेतन महाप्रभु ने इस्तेमाल किया कि जो जिस स्थिति में थे उसको फिर एलिवेट करके कृष्णा कॉन्शियसनेस में। फिर एक और प्रिंसिपल निकल के आते हैं कि महाप्रभु ने नवद्वीप में प्रचार नहीं किया इतना जितना कि उन्होंने दक्षिण भारत में किया। तो प्रभुपाद जी उसके परपट में लिखते हैं कि नवद्वीप में जो है वहां पे स्थिति जो है समय जो अनुकूल नहीं था, वहां पे जो स्मार्ट ब्राह्मणस बहुत थे, स्मार्ट ब्राह्मण स्मार्ट ब्राह्मण इस प्रकार से जो काफी अपोज करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने एक बार ही थोड़ा गोपी गोपी का नाम लिया तो उसी में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये जो है स्थान अभी ठीक, जब वो संकीर्तन करते थे कितना अपोजिशन आता था, तो उन्होंने इसको वहां से उन्होंने एग्जिट किया। तो एक भी प्रिंसिपल यहाँ की निकालता है एग्जिट, जो जहां पे अगर प्रीचिंग उतनी राइट नहीं हो रही है, वहां के लोग इतने उस प्रकार से ग्रास्प नहीं कर रहे या उस प्रकार से एक्सेप्टेबिलिटी कम है, वहां से एग्जिट कर जाना चाहिए। और किधर प्रचार करना चाहिए, जहां पे एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। तो चेतन महाप्रभु ने इधर आकर प्रचार किया क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस ज्यादा था। वैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी जब प्रचार किया तो सबसे पहले अपने घर में प्रचार किया, तो घर वाली को समझाया मी और टी, तो घर वाली ने क्या बोला, टी, बोले ठीक है एग्जिट, यहाँ से चलो प्रचार। तो कई बार जो भक्त लोग अपने घर में ही प्रचार करने का प्रयास करते हैं, तुम भी भक्त बन जाओ, तुम भी भक्त बन, लेकिन भक्त जो घर वाले हैं वही नहीं भक्त बनते। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे जीव हैं, क्यों उनके पीछे पड़े हुए, पूरी दुनिया पड़ी है प्रचार करने के लिए ना। तो इस प्रकार से आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि यहाँ मैं और मेरा हम व्यतीत करने, मैं यहाँ से पैदा हुआ तो मुझे इधर ही प्रचार करना है। तो महाप्रभु ने नवद्वीप में प्रचार नहीं किया। नवद्वीप में उन्होंने किनको भेजा, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, जिनको उन्होंने एम्पावर किया था, बोला मैं उधर नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ प्रचार करके आओ। तो इसलिए कई बार जो एग्जिट करना पड़ता है, वहां से निकल करके दूसरे स्थान में जाकर के प्रचार करना जहां पे एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। वैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भारतवर्ष में प्रचार किया पहले, लेकिन भारतवर्ष में जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो क्या थी, बहुत कम थी। लोग सुनते नहीं, हम जानते हैं राम कृष्ण आप क्या मुझे बताओगे, सुनते नहीं। लेकिन जब विदेश गए तो विदेश में जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या थी, बहुत हाई थी। तो उन्होंने भी ये प्रिंसिपल अपना एग्जिट यहां से छोड़ करके फिर गए विदेश, वहां प्रचार किया, फिर अपने शिष्यों के माध्यम से, डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स, उनके माध्यम से भारतीयों को आकर्षित किया। तो ये भी एक सिद्धांत निकल करके आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रीचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत चेतन महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा से आते हैं। सबसे पहले क्या था, इम्ब्रेस, आलिंगन करना। आलिंगन करने का मतलब उनको अपना एसोसिएशन प्रोवाइड करना, टू गिव एसोसिएशन। दूसरा क्या था, एम्पावर, एम्पावर करना, उनको शक्ति प्रदान करना ताकि आगे बढ़े। क्योंकि जो एक अच्छे लीडर की पहचान ये होती है कि वह अपने आगे के लीडर्स को क्रिएट कर सकता है, सक्सेशन क्रिएट करता है। तो ऐसे उन्होंने एम्पावर किया कि आप जाइए, आप आगे प्रचार कीजिए। और तीसरा क्या था, एंजॉय, कि वो जो भक्ति के नाना प्रकार की विधियां प्राप्त हुई हैं, उन विधियों को खुद में अमलीकरण करके, ऐसा नहीं कि खुद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। जैसे आप कोई व्यक्ति है, भक्त है लेकिन ठीक प्रकार से माला नहीं करता, लेकिन दूसरों को बोलता है कि आप भी माला कीजिए, तो सबसे पहला प्रश्न जो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से क्या पूछेगा, वो बोलेगा चैंट एंड बी हैप्पी। तो बोले आपको देखकर तो नहीं लगता चैंट एंड बी हैप्पी, पहले आप हैप्पी हो जाओ फिर हमें हैप्पी बनाना। तो जब तक स्वयं जो है उसको व्यक्ति रिलीश नहीं करता तब तक उसको प्रचार नहीं करना है। कई बार एक उदाहरण से भी समझाते हैं कि मान लो गुलाब जामुन है और बहुत अच्छा से अच्छा स्पून है कि वो सोने का स्पून है सिल्वर का स्पून है, लेकिन वो स्पून जो है उस गुलाब जामुन को रिलीश नहीं कर पा रहा, वो टच तो कर रहे लेकिन उसको रिलीश नहीं कर पा रहा। तो कई बार इतना क्लोज होने के बावजूद भी, आनंद कंद होने के क्लोज होने के बावजूद भी कई बार जो उसको रिलीश नहीं कर पाता। तो जो व्यक्ति रिलीश नहीं करेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस को वो आगे शेयर भी नहीं कर पाएगा, वो दुखी दुखी करके बोलेगा। और जब ऐसा दुखी दुखी प्रचार तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु खूब रिलीश कर रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे, तभी तो लोग उनको देख करके आकर्षित हो रहे थे, अरे ये कौन व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति, इतना सुंदर व्यक्ति, इतना उस वो है, इतना वो प्रचार, इससे उनके से वो आकर्षित हो रहा था, है ना, उनका आकर्षण हो रहा था जब वो एंजॉय कर रहे थे। इसलिए भक्ति के जितने भी अंग हैं सभी अंगों को रिलीश करना, रिलीश करते हैं जब एंजॉय करते हैं, फिर उसको एक्सचेंज करना कि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं भक्ति के उसको हम एक्सचेंज करते हैं, और फिर जब एक्सपेंड करते हैं तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, वो फिर हर एक डायरेक्शन में क्या होता है वो एक्सपेंड करता है। और जब ऐसा एक्सपेंशन होता है एक एक करके तो एक्सप्लोजन हो जाता है, अरे वो। और हमें प्रचार के समय जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ऑलरेडी किसी स्तर के हैं, तो उस स्तर से उनको एलिवेट करके उनको शुद्ध भक्ति कृष्ण भक्ति तक लेकर के आना, जहां पर वो कंक्लूड कर जाए कि कृष्ण ही ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारणम, यही जो सर्व कारण कारणम है, कृष्ण ही है जो सबके मूल है, इन्हीं की मुझे भक्ति करनी है, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति करना, इस स्थिति तक उसको बाकी चीजों से हटाना। जो गीता का संदेश है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शोच, एकला भक्ति केवला भक्ति अनन्य भक्ति किसकी, श्री कृष्ण की भक्ति, उस स्तर तक उसको लेकर गया जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। श्री वैष्णववाद तत्ववादी मायावादी बुद्ध जैन जितने लोग थे सबको धीरे 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 करके एक निष्ठ भक्ति अनन्य भक्ति केवला भक्ति श्री कृष्ण भक्ति एलिवेट करना। और अंतिम क्या था, एग्जिट, वहां से एग्जिट कर जाओ जहां पे प्रचार का उतना वो नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी जब फ्रांस में गए तो जब फ्रांस में प्रचार कर रहे थे तो व्यास आसन पे बैठे, तो व्यास आसन पे बैठे तो सभी वहां के लोग ऑब्जेक्शन करने लगे, उनकी कथा को नहीं सुन रहे थे, इवन पत्थर मारने को भी तैयार थे। प्रभुपाद जी ने बोला चलो यहाँ से, यहाँ इनको प्रसाद बांटो संकीर्तन करो, यहाँ कथा नहीं करेंगे। तो एग्जिट कर जाना चाहिए, लेकिन कई जगह जो है वो रिसेप्शन भी अच्छा होता है। तो डिपेंड्स, समय काल परिस्थिति के अनुसार जो है व्यक्ति को प्रचार में लगना चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत है महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा से। आप से किसी को कोई प्रश्न है?
तो जो राम भक्ति में लगे हुए हैं उनको कन्वर्ट करना तो कोई जरूरी भी नहीं था, जैसे मुरारी गुप्त थे वो राम भक्त थे, उन्होंने मालूम उनको कन्वर्ट नहीं किया, उन्होंने टेस्ट किया लेकिन उनको बोला कि नहीं आप तो राम भक्त हो।
हाँ, तो उन्होंने कन्वर्ट किया ही नहीं, आप देखोगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दर्शन दिया। इस श्लोक में क्या लिखा हुआ पढ़िए एक बार,
विप्र वाले क्या लिखा, दर्शन प्रभाव तुम देखे गेलम और अजन्म स्वभाव,
ए तुम्हार दर्शन प्रभाव, आपके दर्शन मात्र से आपने, उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने आपका दर्शन किया, मैं पहले राम 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 करता था, अब कृष्ण 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 दर्शन पर, उन्होंने फोर्सफुली नहीं बोला तुम्हें कृष्ण भक्त बनना है, राम तो थोड़े नीचे हैं, राम तो थोड़े नीचे हैं कृष्ण तो ऊपर हैं, ऐसा बोला उन्होंने, बोले मैंने आपको देख के अपने आप हो रहा है स्वतः हो दर्शन के प्रभाव से, महाप्रभु ने फोर्स नहीं किया। और कोई प्रश्न,
हरे जिसमें आपने जैसे बताया कि एक भक्त जो है दूसरे को आलिंगन करता था, उसको प्रेम दे देता था, तो जो दूसरा जिसको प्रेम मिल रहा है वो खुद उसका कुछ क्वालिफिकेशन है या नहीं? अगर क्वालिफिकेशन नहीं है
जो दूसरा आलिंगन कर रहा है,
मतलब जिसको प्रेम मिल रहा है,
जिसको मिल रहा है,
हाँ, वो उसका कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं?
क्वालिफिकेशन वो मनुष्य होना चाहिए, वो जीव जो है वो मनुष्य होना चाहिए।
ओके, इफ दैट इज देयर तो फिर इट सीम्स लाइक
वो भक्त बन सकता है, कि मनुष्य जीवन में भक्ति की किया जा सकता है। अगर महाप्रभु हैं वो जानवरों को करा सकते हैं, लेकिन अगर वो मनुष्य है तो क्यों नहीं भक्ति कर सकते?
So,
एक ही क्वालिफिकेशन।
फिर मतलब इसमें ऐसा लगता है कि अगर इस प्रोसेस को फॉलो करें तो एक इनफाइनाइट प्रोसेस बन जाता है, मतलब एक किसी को दे रहे हैं फिर दूसरे किसी और को दे रहे हैं, तो ऐसे क्या उनके डिसेंडेंट्स भी आजकल ऐसे प्रकार के पाए जाते हैं या नहीं?
तो एक को दिया फिर क्या समझ नहीं आया?
मतलब ये एक तरीके से एक इनफाइनाइट प्रोसेस जैसे एक इनफाइनाइट चेन होती है ना?
हाँ, इनफाइनाइट चेन ही
है। तो फिर उनके जो डिसेंडेंट्स होंगे कि उनको भी सेम लव ट्रांसफर होता होगा, तो ऐसे ऐसे लोग
आप में से कितने लोग साइंस के स्टूडेंट हैं? सभी हैं। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कंडक्टिविटी, विच इज द बेस्ट कंडक्टर, गोल्ड और आयरन? बोलिए, गोल्ड। तो उसकी कंडक्टिविटी क्यों इतनी हाई है? इलेक्ट्रिक करंट तो सेम है लेकिन उसकी कंडक्टिविटी हाई क्यों है? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी लो है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। संचार तो होगा, संचार तो होगा, लेकिन इधर रेजिस्टेंस कितना है, तभी थॉट फ्लो होगा। तो इसलिए जो शुद्ध स्तर के भक्त हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है, चट 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 जिसको छूते हैं दर्शन में प्रभाव है, कुछ नहीं किया इतनी कंडक्टिविटी है। Amount of current, of course, a pure शुद्ध भक्तों का संग मिलता है तो ज्यादा करंट मिलता है।
तो फिर मुझे ये सब जो थे ये सब शुद्ध भक्त नहीं थे क्या, ऐसा कहना चाहिए?
अब क्या थे? महाप्रभु के संग से वो शुद्ध भक्त बने, ऐसा समझ सकते। कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते, लेकिन ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य दे बिकम प्योर डिवोटीज। तभी तो पूरे गांव गांव को अकेले प्रचार कर रहे हैं, जिसको शेयर कर रहे हैं वो भी शुद्ध भक्त बन रहा है। तो दे हैव बिकॉज दे वर personally touched by Chaitanya Mahaprabhu, so they were the special ones.
एक क्वेश्चन और था गुरुजी, ये आपने जैसे एग्जिट वाला प्रिंसिपल बताया, एक स्टेटमेंट और भी सुनी है, तमाम कृष्ण महाराज बोलते हैं कि one should not blame his preaching field. तो इन दो चीजों कैसे समझेंगे?
One should try, try करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्त होकर नहीं करना चाहिए। वहां से ठीक है नए रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं उनको भी प्रचार करो, ट्राई तो करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी वॉज नॉट अटैच्ड कि पहले इंडिया में हो, पहले इंडिया में, पहले यहीं से मैं ट्रेन करूंगा, यहीं से मैं अपने डिसाइपल्स को भेजूंगा तभी जाके वैष्णव प्रचार होगा। उन्होंने बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ, ये एग्जिट चले, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही था, भारतवर्ष में प्रचार करना भी ऑब्जेक्टिव था, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को उन्होंने पूरा but through different means. Means may change, but objective is the same.
तो जैसे अक्सर हम ये सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी को देखा, उनको छुआ, आलिंगन किया, विष्ट पे जागृत हो गया। और जब नवदीप लीला में भी थे तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनका अपोज करते थे, या दक्षिण भारत में भी थे तो जैसे कि बौद्ध धर्म का हमने देखा पीछे प्रसंग आया, तो कई लोगों में इस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु उनको देखते छूते, और कई लोगों में इस प्रकार का नहीं दिखता ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों है?
महाप्रभु ने जिसको छुआ वो तो भक्त बना ही, नवदीप ने भी जिसको छुआ ऐसा नहीं वो भक्त नहीं बना।
नवदीप भी भक्त द्वेष भी करते थे महाप्रभु से,
द्वेष करते थे, लेकिन जैसे बड़े मुस्लिम्स थे, बहुत सारे मुस्लिम्स थे, वो भी कहते थे मैं क्यों हरी 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 कह रहा मुझे पता नहीं, जैसे चांदका जी की लीला में आती है, चांदका जी इतने बड़े भक्त बन गए, बहुत सारे भक्त बने वहां भी, ऐसा नहीं कि वहां भक्त नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे तो बहुत लोगों को अप्रोच कर रहे थे, बहुत पूरा खुलेआम खुल गए थे पूरा, लेकिन वहां थोड़ा लिमिटेड थे, स्वच्छंद रूप से वो चल रहे थे, सबको टच किए जा रहे थे, लेकिन वहां की बस लिटिल कंफर्ट।
जैसे काले कृष्ण दास का एक आगे वर्णन आएगा, महाप्रभु के साथ ही थे वो, उनमें कृष्ण प्रेम सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर भी वो भ्रमित हो गए, तो ऐसे हम अलग अलग चीजें देख रहे हैं महाप्रभु के संपर्क
हाँ, लेकिन अब
में।
एंड रिजल्ट देखोगे तो ही बिकम अ प्योर डिवोटी महाप्रभु उनसे, और चाहते थे कि जो दक्षिण भारत की लीला भी हम पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत की लीलाएं पता ही नहीं चलता, एकमात्र जो उनके साथ थे उस समय वो कौन थे, काला कृष्ण, और कोई था ही नहीं। तो कृष्णा टू क्या चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा ना उनकी रक्षा नहीं की, उनकी रक्षा भी की, शुद्ध भक्त भी बने, और लेकिन उनका उद्देश्य था कि ये जो है पास टाइम्स वो पता चले सब।
इसमें जो प्रेमानंद का प्रश्न है, इसमें जो काले कृष्ण दास के संपर्क में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर जीव चाहे तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, माया इतनी प्रबल है, अगर कोई चाहे कि मेरे को माया को ही एम्प्रेस करके रहना है तो उसमें भगवान भी, भगवान के साथ होते हुए भी वो माया में गिरे, तो अगर अगर हम चूज करते हैं माया में गिरने को तो भगवान हमें किस स्वेच्छा देते हैं। और मतलब कि जो नवदीप में भी सम्राट ब्राह्मण थे, तो जो कोई ऑफेंसिव मेंटेलिटी रखेगा और जिसने निर्णय ले लिया कि महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं करना, तो उसमें भी वो महाप्रभु के अंतरंग में रह के भी वो सुखा ही रहेगा, उसको कृपा के प्रसाद से फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जीव के फ्री विल के ऊपर है सारा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे,
अगर कोई इनोसेंट है तो उसको,
इनोसेंट है उसको।
इस प्रेमानंद को जैसे बोला है, अदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आल्सो ये है एक और प्रकार से कि महाप्रभु ने अपने सांगो पांगा से पार्षदम, तो जब महाप्रभु के अलग अलग व्यवहार को हम अलग अलग पार्षदों के साथ देखते हैं तो महाप्रभु आने वाली पीढ़ियों के लिए अलग अलग सिद्धांत साबित करते हुए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं रामानंद राय जब वो देवदासियों का श्रृंगार कर रहे हैं, छोटा हरिदास चाहे वे काल कृष्ण दास, तो और रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य, सनातन गोस्वामी के ह्यूमिलिटी, तो ऐसे महाप्रभु अपने अलग अलग भक्तों से चेतन जब देखें कंटिन्यूअसली तो सब भक्तों को, चाहे मुरारी गुप्त हैं या अन्य सभी भक्तों को, या मुकुंद हैं जब वो मायावाद का संग करते हैं तो उनको, तो ऐसे सब, या गोविंद को यूज करते हैं जब वो वश पार करने के लिए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए धर्म के या भक्ति के सिद्धांत को स्थापित करने के, कैसे जिया जाए। तो दिस इज वन ऑफ द विच कविराज गोस्वामी रिपीटेडली चैतन्य के अंदर ये हिंट देते हैं बारंबार कि क्यों महाप्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं। तो जब हम पार्षदों इस प्रकार से देते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हैं और महाप्रभु उनके द्वारा यूज कर रहे हैं, दामोदर पंडित का भी आपने उदाहरण दिया कि सोशल एटिकेट महाप्रभु को सिखाने के लिए लीला करते थे, तो हर एक के अंदर बहुत रिफाइंड प्रिंसिपल्स हमको मिलते हैं क्योंकि महाप्रभु भक्तों को यूज कर रहे हैं इस प्रकार से। और अनदर थिंग, आपने जो लेक्चर में बोला, जस्ट वांट टू कमेंट ऑन दैट आल्सो, कि दक्षिण भारत के अंदर महाप्रभु ने सक्सेशन नहीं क्रिएट किया, तभी हम देखते हैं पीढ़ियों के बाद एक एक आधी पीढ़ी के बाद में वहां कोई भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, गौड़ी वैष्णव इधर वहां पर नहीं है, आज भी नहीं है ज्यादा कुछ लेकिन, तो क्योंकि अधिकांश महाप्रभु के जो समय में महाप्रभु का भी जो प्रचार था मुख्यतः, और महाप्रभु के पार्षद गण भी थे वो राग मार्ग का फॉलो का पालन किया करते थे, वहां पे हम इतना अधिक साधना भक्ति का प्रोसेस नहीं देखते हैं। लेकिन उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अम्बावर के रूप और सनातन गोस्वामी को कि आगे आगे आने वाली पीढ़ियों को साधना भक्ति के मार्ग, वैदिक साधना भक्ति के मार्ग के जो पालन करके ये सिद्धि प्राप्त होगी, तो इसीलिए उनको लिखा गया डॉक्यूमेंटेशन करो सर, भक्ति सामरी सिंधु हरि भक्ति विलास इत्यादि उपदेशामृत इत्यादि जो ग्रंथ हैं इनका संकलन करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को सिद्धांत साबित हो सके। नहीं तो अभी क्या होता है, इस्कॉन मंदिर के अंदर भी सब यहाँ खड़े होकर खाली रो रहे होते हैं, आंख से आंसू बहा रहे होते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए आंख से आंसू बहा रहे थे, सुबह जब आप बैठ के मंगल आरती सुबह उठ के जब मर्जी लोग आते थे, कीर्तन होता था, आंख से आंसू बहाते, नृत्य करते और उनके रोंगटे खड़े होते और सबको लगता यही भक्ति है, कुछ चैतन्य महाप्रभु ने यही किया। लेकिन तो हम देखते हैं चैतन्य में ईश्वर का वर्णन आता है, लेकिन जब साधना भक्ति का आगे जो सभी आचार्य ने भी उसको किया और वो महाप्रभु के द्वारा ही वो आया कि आज की पीढ़ी की जो कृपा है वो साधना भक्ति। रूप गोस्वामी, सातन गोस्वामी और क्षण गोस्वामी, जब रजलीला इत्यादि, तो वी हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसेस दिया महाप्रभु ने, और वो भी महाप्रभु ने अभी इतना स्टैंडर्डाइजेशन किया उसको महाप्रभु ने कि नाना शास्त्र विचार में एक निपुण हो, सद्धर्म संस्थापक हो, कि छह गोस्वामियों ने और अन्य सब गोस्वामियों ने संकलन करके किया, तो हमको पता है फीडबैक में हाथ डालो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, ये इतना रिफाइंड प्रोसेस हमको पता है। नहीं तो उस समय तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था कि हमें क्या करना, क्या संन्यास लेना है, घर छोड़ना है, या फिर पागल का नृत्य करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो आचार्य कृपा से हमको पता है कि आज 16 माला जो है स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारे पास। तो दैट इज वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग्स इन दिस रिगार्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ साउथ इंडिया पास्ट टाइम। तो मुख्यतः वो बहुत फास्ट एक्सपेंशन महाप्रभु ने किया, लाइक भक्तों को बनाया, कृपा उनको देना था, लेकिन हमारे लिए जो है वो साधना भक्ति कृपा चैतन्य महाप्रभु, उनका महाप्रभु का प्लान हमारे लिए षड गोस्वामी के माध्यम से और उनके ग्रंथों के माध्यम से। शिष्यधन महाप्रभु की, समस्त गौर भक्तवृंद की, तथा गौर प्रबंध।